वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओ, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। पिछले कार्यक्रम में सूरह अनकबूत की आयतों की व्याख्या समाप्त होने के बाद अब अगले सूरह अर्थात सूरह रूम की आयतों की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। आइए पहले सूरह रूम की आयत क्रमांक 1 से 5 तक की तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم।
الله के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। अलिफ लाम मीम। रोम वाले ईरानियों से पराजित हो गए, अरबों से सबसे निकट धरती में, और वे अपनी पराजय के पश्चात शीघ्र ही विजयी हो जाएंगे अगले कुछ ही वर्षों में। और अधिकार तो ईश्वर ही का है, पहले भी और उसके बाद भी। और उस दिन ईमान वाले ईश्वर की सहायता से प्रसन्न होंगे। वो जिसकी चाहता है सहायता करता है और वो अत्यंत प्रभुत्वशाली और दयावान है।
ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार प्राचीन काल में रोम और ईरान के राज्यों के बीच लंबे समय तक युद्ध और टकराव रहा है। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो रोम और ईरान के बीच अरब के हिजाज क्षेत्र के निकट एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें रोम वालों को पराजय हुई। ईश्वर ने अपने पैगंबर को सूचना दी कि यद्यपि रोम वालों को पराजय हुई है लेकिन अगले युद्ध में वे विजयी होंगे।
जब ये ईश्वरीय भविष्यवाणी पूरी हो गई तो ईमान वालों को इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अनेकेश्वरवादियों पर उनकी विजय का वादा अवश्य पूरा होगा, क्योंकि हर चीज़ ईश्वर के हाथ में है और वो जिसकी चाहता है मदद करता है, उसे सम्मानीय बना देता है और उसे अपनी दया का पात्र बनाता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि कुरान मजीद की भविष्यवाणियाँ उसके ईश्वरीय चमत्कार होने का एक प्रमाण है।
पराजयों से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि हमेशा ईश्वर की मदद की ओर से आशावान रहना चाहिए।
ईश्वर का काम तत्वदर्शिता पर आधारित होता है। ईमान वालों की विजय और पराजय भी उसकी तत्वदर्शिता के अंतर्गत ही है। अलबत्ता ईमान वालों को अपने दायित्वों का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम उनके हाथ में नहीं बल्कि केवल ईश्वर के हाथ में है।
आइए अब सूरह रूम की आयत क्रमांक 6 और 7 की तिलावत सुने।
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون।
ये ईश्वर का वादा है और वो कभी अपने वादे को नहीं तोड़ता, लेकिन अधिकतर लोग नहीं जानते। वे तो आंखों से दिखाई देने वाले सांसारिक जीवन के केवल विदित रूप को जानते हैं, किंतु प्रलय के जीवन की ओर से वे बिल्कुल निश्चेत हैं।
पिछली आयतों में अनेकेश्वरवादियों पर ईमान वालों की विजय का वादा किया गया था। ये आयतें कहती हैं कि हे लोगों, ईश्वर के वादे में शक न करो कि ये वादा निश्चित रूप से पूरा होकर रहेगा और ईश्वर के वादे में किसी भी तरह के उल्लंघन की संभावना नहीं है।
अलबत्ता जो लोग ईश्वर पर ईमान नहीं रखते या जिनका ईमान कमज़ोर है, उन्हें ईश्वर के वादे पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें ईश्वर के ज्ञान, शक्ति और तत्वदर्शिता का ज्ञान नहीं होता और वे केवल विदित और भौतिक बातों को देखते हैं। वे विजय व पराजय को भौतिक कारणों से तोलते हैं। वे चूंकि प्रलय की ओर से निश्चेत होते हैं, इसलिए हर चीज को केवल संसार की सीमित ऐनक से देखते हैं और अपने आप को संसार के तथ्यों को समझने से वंचित कर लेते हैं।
इन आयतों से हमने सीखा कि वादों के उल्लंघन का मुख्य कारण प्रायः अज्ञान या अक्षमता होता है, जबकि ईश्वर इन बातों से पवित्र है।
संसार और भौतिक वस्तुओं का मोह मनुष्य को दूरदृष्टि और तथ्यों को देखने से वंचित कर देता है।
प्रलय से निश्चेतना का कारण संसार की विदित वस्तुओं पर ही ध्यान देना और उन पर मोहित होना है।
आइए सूरह रूम की आयत क्रमांक 8 की तिलावत सुने।
अवलम यतफक्करु फी अन्फुसिहिम मा खलकल्लाहु अस्समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक्क व अजलिन मुसम्मा وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ।
क्या उन्होंने अपने आप में ये सोच विचार नहीं किया कि ईश्वर ने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच है सत्य के साथ और एक नियत अवधि के लिए पैदा किया है, और निश्चय ही बहुत से लोग अपने पालनहार से मुलाकात का इनकार करने वाले हैं।
यह आयत कुरान मजीद की अनेक अन्य आयतों की तरह इंसान को सृष्टि की व्यवस्था में सोच विचार का निमंत्रण देती है और उनसे कहती है कि वे अपनी बुद्धि और अंतरात्मा को टटोलें और सोचें कि वास्तव में किसने आकाश और धरती की रचना की है। क्या ये सृष्टि लक्ष्यहीन और अकारण है? क्या संसार का निर्धारित आरंभ और अंत नहीं है? क्या ये माना जा सकता है कि मनुष्य के पास बुद्धि हो और वो सोच समझकर अपने काम करे, लेकिन इस विशाल सृष्टि का, जिसका मनुष्य एक छोटा सा भाग है, संचालन युक्ति व तत्वदर्शिता के आधार पर ना हो? क्या इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि इस संसार में हम इंसानों का जीवन समाप्त हो जाए और कोई अन्य संसार ना हो?
बहुत से लोग जो केवल संसार पर मोहित होते हैं, प्रलय और ईश्वरीय न्यायालय में उपस्थिति का इनकार करते हैं, ताकि अपने विचार में आराम से और बिना किसी चिंता के इस संसार की अनुकंपाओं से आनंदित होते रहें। लेकिन सोचने और विचार करने वाले लोग सृष्टि की व्यवस्था को तर्कसंगत और सही लक्ष्य के अंतर्गत मानते हैं, और उनकी आस्था है कि सृष्टि की एक निर्धारित और ठोस व्यवस्था है जो संसार के रचयिता की तत्वदर्शिता की सूचक है।
इस आयत से हमने सीखा कि इस्लाम ने लोगों को सृष्टि की व्यवस्था पर विचार करने का निमंत्रण दिया है, ताकि उनका ईमान सही पहचान के आधार पर हो।
सृष्टि का लक्ष्य भी है और उसकी एक निर्धारित समय सीमा भी है।
प्रलय का इनकार तर्कसंगत सोच के आधार पर नहीं है, बल्कि इसका कारण संसार पर मोहित होना और उसे टिकाऊ व स्थायी समझना है।